अमृत की धारा है थारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन धरती और गगन है, के तार जुड़े प्रभु से मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती पढ़ लो सजनी साजन लाए हमारे, साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा।
ओम शांति। 13वीं शताब्दी भारत के एक महान सूफी संत दार्शनिक कवि अध्यात्म जगत की एक महान हस्ती हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में जिनकी मजार है, उनके जीवन में एक उल्लेख है। अब तक का जो इस्लाम था उसमें संगीत और संगीत के वाद्य, इस पर इतना प्रचार प्रसार नहीं था, पर ये एक ऐसी हस्ती हुई जिसने संगीत के माध्यम से प्रभु प्रेम को व्यक्त किया, और इसलिए कई लोग उनके विरोधी भी थे। कुरान सीधा कहीं नहीं कहता कि संगीत हराम है, परंतु हदीस में कहीं कहीं आया है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब भारत में आए, पहले दिल्ली में और फिर अजमेर में, उनके शब्दों में और उनके संगीत में और उनके जो वाद्य थे उसमें जादू था। पर कई लोग जैसे कहा विरोधी थे, पर जो विरोधी थे जब जब उनके पास आते और वो संगीत की धुन सुनते, मंत्रमुग्ध हो जाते। एक बार बगदाद से एक सूफी संत जिलानी ख्वाजा मोइनुद्दीन से मिलने आते हैं, क्योंकि जिलानी ऑर्थोडॉक्स पुरानी इस्लामिक परंपराओं को मानने वाले थे, और जहां संगीत और वाद्य हलाल नहीं हराम है, नॉट अलाउड, तो उनका सम्मान रखने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने सारे वाद्यों को छिपा कर रख देते हैं। शायद उनके जीवन का वो एकमात्र दिन होगा जिस दिन उन्होंने कुछ गाया नहीं, कुछ बजाया नहीं, सम्मान रखने के लिए, क्योंकि दूसरा एक सूफी संत बड़ी सुदूर प्रांत बगदाद से आ रहा है। और जब वो आते हैं जिलानी और दोनों बैठते हैं, जो संगीत के वाद्य है इंस्ट्रूमेंट अपने आप बजने लगते हैं। जिलानी उससे कहते हैं कि तुम लाख छुपाओ पर तुम्हारे तो रोम रोम में संगीत है, तुम बजा नहीं रहे हो परंतु फिर भी ये वाद्य अपने आप बज रहे हैं, अपने आप संगीत की धुन गूंज रही है। तो इस जगत में ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने प्रभु प्रेम को संगीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। वो भजन हो सकता है, कव्वाली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और वो संगीत जो मन को ईश्वरीय प्रेम में सराबोर कर दे, वो संगीत जो मन को ईश्वरीय प्रेम में डुबो दे, वो संगीत जो मन को संसार की सभी बातों से परे ले जाए, वो ईश्वरीय संगीत मन को बड़ा सुख देता है, आनंद देता है। और जब भगवान धरती पर आते हैं और उसकी जो वाणी चलती है उस वाणी में भी एक संगीत ही है, इसलिए उसकी वाणी को मुरली कहा गया है। भागवत में दिखाया है गोपिया श्री कृष्ण के प्रेम में पागल है, जैसे ही मुरली सुनती है सुदबुद्ध खो बैठती है, कोई घर पर है पानी भर रही है पानी बहा जा रहा है, काजल लगा रही है काजल कहीं और जा रहा है, रोटियां जल रही है दूध उबल रहा है और क्या क्या हो रहा है, सुदबुद्ध सब बिसरी, भागवत में गोपिका गीतम है, गोपिया कहती है तव कथामृतम, हे गोविंद, हे राघव, हे माधव, हे केशव, तेरी जो मुरली है, तेरी जो वाणी है, तेरे जो शब्द है अमृत की तरह है। तव कथामृतम, तेरी जो कहानी है, तेरी जो कथा है, तेरा जो चरित्र है कैसा है? अमृत की तरह है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, हमारा जीवन तप रहा है विकारों में, पाप में, और जब तेरी वाणी हम सुनते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविबिरडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाददम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम, सुनने से ही मंगल होता है। कवियों ने जिसका गायन किया है ऐसी तेरी वाणी है। कल्मषापहम, जीवन में जो कलंक है, जीवन में जो दाग है, जीवन में जो धब्बे है, जीवन में जो ब्लॉट, ब्लेमिश, स्पॉट, वो सारे सारी काली माँ धुल जाती है। ऐसी तेरी कहानी है, ऐसे तेरे शब्द है, ऐसी तेरी वाणी है। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दिलों को सहारा। तो मुरली ब्राह्मण जीवन का श्वास है, मुरली वो लाठी है अव्यक्त महावाक्य बाबा के। इस लाठी को पकड़कर तुम परमधाम पहुंचते हो और परमधाम से सतयुग में आते हो। मुरली दिल का सहारा, दिल की धड़कन, ब्राह्मणों का गीत, ब्राह्मणों का संगीत, हर प्रश्न का उत्तर, संजीवनी बूटी, सब कुछ है। यदि इस मुरली का इतना महत्व है तो हम उसे कितना धारण कर रहे हैं, कितना हमने इसको समझा है। क्या करें इस मुरली के साथ, कैसे इसका अध्ययन करें और कैसे इसमें डूब जाए। महात्मा गांधी ने लिखा है अपनी जीवन कहानी में, जब भी मेरे जीवन में कोई संकट आता है, कोई समस्या आती है, कोई मुश्किल आती है, मैं गीता उठाता हूं और कोई भी एक पेज खोलता हूं और मुझे वही अपने जीवन की समस्या का हल मिल जाता है। सर्वशास्त्र शिरोमणि है गीता, सभी शास्त्रों की माय बाप है। वो गीता अब भगवान सुना रहा है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में एक प्रसंग है, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए तो देखा वहां पर भगवद गीता का पाठ चल रहा है और वो तमिल में चल रहा है। वहां पर सारे लोग तमिल लोग बैठे हुए हैं, परंतु जो गीता सुनाने वाला है वो हिंदी में सुना रहा है, क्योंकि वो उत्तर भारत से आया हुआ है। और उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऐसे भाव विभोर हो गए हैं कि आंखों से आंसू बह रहे हैं, उनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है पर आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो पूछते हैं किसी एक व्यक्ति से कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? वो कहता है नहीं, मुझे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, पर इतना जरूर पता है, मैं मंच पर देखता हूं कि रथ है और श्री कृष्ण है और अर्जुन को गीता सुना रहे, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। और यह दृश्य देखने मात्र से अश्रु धाराएं बह रही है। जहां प्रभु प्रेम है, जहां परमात्मा प्रेम है, वहां भाषा गौण हो जाती है। तो मुरली सभी भाषाओं से परे है। वो है हिंदी में, परंतु सारी भाषाएं उसमें समाहित है। और जैसे कहा जाता है संगीत की कोई भाषा नहीं होती, उसी तरह मुरली की भी कोई भाषा नहीं है, उसी तरह परमात्मा प्रेम की भी कोई भाषा नहीं है। और जैसे उस संगीत में स्वर होते हैं, कौन से, सा रे ग म प ध नी, सप्त स्वर सरगम, उसी तरह मुरली में भी सा रे ग म प ध और नी ऐसे सप्त स्वर है। इन्हीं सप्त स्वरों की चर्चा से आज की इस भट्टी की शुरुआत करेंगे। एक संगीतज्ञ ने लिखा है, यदि मैं तीन दिन दिन रियाज नहीं करता हूं, अभ्यास नहीं करता हूं, प्रैक्टिस नहीं करता हूं, तो ऑडियंस को पता चल जाता है कि मैंने अभ्यास नहीं किया है। यदि मैं दो दिन अभ्यास ना करूं तो संगीत के जो एक्सपर्ट्स हैं, संगीतज्ञ दूसरे, उनको पता चल जाता है कि मैंने इस दिन अभ्यास नहीं किया है। दो दिन, अगर मैं एक दिन अभ्यास नहीं करूं तो मेरे जो पट शिष्य है, जो मुझसे संगीत की शिक्षाएं ले रहे, जो अंग संग रहते, उन्हें पता चल जाता है कि गुरुजी ने आज अभ्यास नहीं किया है। और जहां तक मेरा सवाल है, यदि मैं एक पल भी अभ्यास ना करूं तो मुझे पता चल जाता है, बेचैनी हो जाती है। इसलिए सतत अभ्यास, जो संगीत सीखने वाले क्या करते हैं, निरंतर साधना करते रहते हैं। और एक सूक्ष्म बात, संगीत की साधना वाले ब्रह्मचर्या में साधना करते हैं। यदि ब्रह्मचर्य भंग हुआ तो संगीत की जो सूक्ष्म तरंगे हृदय में है वो तार टूट जाते हैं, वो ध्वनि, वो आवाज, वो सुर, वो आलाप नहीं निकल पाता। एक दूसरी बात है, उसी तरह यदि मुरली वो गीत है, यदि मुरली वो संगीत है, मुरली वो धुन है, तो हमें भी निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा, क्योंकि यही अभ्यास है सर्व अवगुणों से जो दूर करेगा। मुरली की ये धुन दूर करे अवगुण। तो मुरली से सात बातें लेनी है, हर दिन की मुरली से सात चीजें उठानी है, हर दिन की मुरली से ये सात स्वर बजाने हैं। पहला सा, सा अर्थात सार, सा अर्थात सार, मुरली का सार क्या है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, संसार की आत्माएं दुखी है, दर्द में है, भक्ति शक्तिहीन हो गई है, भक्ति उस वृक्ष की तरह है जो जर्जर हो चुका है, जिसमें फल नहीं है, फिर भी एक छाया है जिसके नीचे भक्त आराम कर रहे हैं। कौन सी छाया है वो, कौन सी छाया है, सुबह की अव्यक्त वाणी, कौन सी छाया, आज नहीं तो कल मिलेगा। क्या मिलेगा, भक्ति का फल मिलेगा, परंतु भक्ति अब शक्तिहीन हो गई है, भक्ति अब फल रहित हो गई है, इसलिए वो तीर्थ करते, यात्रा करते, दान पुण्य करते, फिर भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि भक्ति में शक्ति नहीं, तमो प्रधान हो गई है। इसलिए जब ऐसा दुख का वातावरण संसार में है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा फर्जदाई क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा फर्स्ट ड्यूटी, तुम्हारी फर्स्ट ड्यूटी क्या है, मुरली में इसकी चर्चा है। जो भी मुरली साकार अव्यक्त रोज पढ़ते हैं, सबसे पहली धुन, सबसे पहला स्वर है, आज की सारी जो मुरली थी सुबह की, उसका सार क्या है। मुरली का सार, मुरली की शुरुआत में बाबा ने कहा, संसार की आत्माएं दुखी है, तुम खुश हो, संसार की आत्माएं दर्द में है, दुख में है, पांच प्रकार के दुख गिनाए। पहला तन का, शरीर की बीमारी है इसीलिए दुखी है। दूसरा मन का, मन की अतृप्त इच्छाएं, तीसरा धन का, धन की कमी इसलिए चिंता, धन ज्यादा इसलिए भी चिंता। चौथा संबंध संपर्क में दुख, हर संबंध बंधन बन चुका है क्योंकि हर संबंध में विकार की प्रविष्टता है, और जिस जिस संबंध में विकार होगा वो कड़ा बंधन है। चौथा पांचवा प्राकृतिक आपदाएं, इन पांच प्रकार के दुखों से कोई छूटा नहीं है। अगर संसार की यह हालत है तो बाबा ने कहा तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा फर्ज क्या है, तुम्हें उनके दुख मिटाने हैं, उनका जो दर्द है वो क्या है, मर्ज है, उनका जो दर्द है वो क्या है, क्या हो गया है वो मर्ज और कर्ज, दोनों चीजें। कर्ज है तो तुम्हें उन्हें कुछ देना है ताकि उस कर्ज से वो मुक्त हो जाए, मर्ज है बीमारी है तुम्हें उनकी बीमारी मिटानी है, दुख की बीमारी जिसकी दवा केवल तुम्हारे पास है, इसलिए तुम राजा हो, इसलिए तुम भरपूर हो, इसलिए तुम्हें अपने आप को भरपूर रखना है, एक भी गुण की कमी ना हो, एक भी शक्ति की कमी ना हो। अगर एक भी गुण की कमी हो, एक भी शक्ति की कमी हो तो संपन्नता का स्टैम्प नहीं लगेगा, क्योंकि संगम युग को नया नाम दिया है आज की मुरली में, कौन सा स्टैम्प ऑफिस, यहां स्टैंप लगेगा, कौन लगाएगा, बाप दादा और परिवार, सबके द्वारा स्टैंप मिलना चाहिए संपन्नता का, एक भी गुण कम ना हो। यदि कोई बाजार से राशन लाए और माचिस न लाए, यह उदाहरण दिया गया है, बाबा इस संसार के उदाहरण देता है, उसे इन उदाहरणों से कोई लेना देना नहीं है, वो निराकार वतन में रहता है, परंतु अपनी बात को समझाने के लिए संसार के उदाहरण को खूंटी के रूप में प्रयोग कर अपनी पॉइंट को टंगाता है। मुरली का सार, तुम्हें संपन्न बनना है, भरपूर बनना है, दाता बनना है, फ्राक दिली से देना है, क्योंकि दुखी है, उदास है संसार की आत्मा है, और भक्ति भी तमो प्रधान है, भक्ति में भी हलचल है, इसके लिए तुम्हारा कितना सारा कर्तव्य है। पालना देने के संस्कार अब भरने हैं, तब राज्य में आ सकेंगे, तब विश्व राजन बन सकेंगे, ऐसी है ना मुरली, सुनी ना सबने। तो सारथात सार, और माताओं को क्या कहा बाबा ने, माताएं कौन है, शक्ति दल, माताएं कौन है, जगत माता, माताएं कौन है, हद के संस्कारों में फंसने वाली नहीं, वंदे मातरम भगवान कहता है। बहुत थक गई थी माताएं, क्यों थक गई थी, इतना ठोकरे खा खा कर, भगवान ने आकर एक सेकेंड में थकावट दूर कर दी। दुनिया वालों ने माताओं को ठोकरे मारी और भगवान ने आकर ठाकुर बना दिया। अपने आप को साधारण नहीं समझना, जगत माता समझो, जगत जननी समझो, जगन माता समझो, कितना ऊंचा सम्मान है, मैं मां हूं। आज कौन सा दिन है पता है, 16 जून फादर्स डे, आज फादर्स डे है, और फादर्स को क्या कहा बाबा ने, भाइयों को भी मुलाकात की है सुबह की मुरली में, भाई क्या है, ट्रस्टी, ट्रस्टी अर्थात निर्बंधन, ट्रस्टी अर्थात लगन में मगन, ट्रस्टी अर्थात स्वतंत्र, कितने ऊंचे समान हैं, कितनी ऊंची बातें हैं, ऐसी बातें संसार के किसी शास्त्र में नहीं है, और रोज नई नई बातें हैं। संसार में एक शास्त्र है, उसका जीवन भर अध्ययन करते रहो, यहां पर नित दिन नई बातें, नित दिन नई पॉइंट्स, और रमणीक पॉइंट्स, ये ज्ञान अटपटा है, खटपटा है और चटपटा है। बाप तुम्हें चौप चीनी खिलाते हैं, नए नए शब्द है इसमें। बाप तुम्हें ज्ञान का वखर देते हैं, बाप को उकीर रहता है। इस भाषा से कोई सिंधी से लिया, कोई मराठी से लिया, कोई गुजराती से लिया, कोई नेपाली से लिया, कोई इंग्लिश से लिया, कोई हिंग्लिश से लिया, कोई संस्कृत से शब्द लिया, कोई शुद्ध हिंदी, कितनी भाषाओं का मिश्रण है मुरली। और कुछ कुछ तो ऐसी भाषा है कि अब तक वो कौन सी है वो पता ही नहीं चला है। कौन सी वाली एक भाषा मुरली में ऐसी आती है जो कौन सी भाषा है अब तक पता नहीं। कौन सी? बच्चे आवंती, बाप की मुरली सुनंती, दूसरों को मुरली सुनावंती, फिर दूसरों को बाप का बनावंती, बाप की सेवा करंती, बाप से मिलने आवंती, और अहो मम माया, बाप को पार्कती देवंती। ये ना संस्कृत है, ना हिंदी है, ना कोई और भाषा है। तो भगवान की मुरली में असंख्य भाषा है और रमणीकता है। एक अव्यक्त वाणी है जिसकी शुरुआत है आज ज्ञान सागर बाप अपनी हजारों ज्ञान गंगाओं में स्नान करने आए हैं। कितने सुंदर शब्द है, आज ज्ञान सागर बाप अपनी हजारों ज्ञान गंगाओं में स्नान करने आए हैं। आज सुप्रीम कमांडर बाप अपनी रूहानी साल्वेशन आर्मी का निरीक्षण कर रहे हैं। अलग अलग शब्द, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोल, अलग अलग अर्थ, मुरली का सार क्या है खींच के निकालना है। बहुत भटके मुरली भक्ति में। अब एक बाप, एक परिवार, एक मत, एक ही लगन। अब इस ड्रामा को साक्षी होकर देखो। भक्ति में था अल्पकाल का आध्यात्मिक मनोरंजन, ज्ञान है पढ़ाई। पार्टी से मुलाकात, पार्टी नंबर 2। तो स अर्थात सार, परंतु सार निकालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ जाएगा सार। क्या करना पड़ेगा? बहुत कुछ करना पड़ेगा। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाए तो ही ठहर पाएगा ये ज्ञान। कोई कहे हम विकार में जाते हैं और मुरली क्लास में भी आते हैं और मुरली भी पढ़ते हैं और मुरली याद भी रखते हैं, याद रखेंगे पर धारणा नहीं हो सकेगी। ये ज्ञान मासी का घर नहीं है। एक बार मधुबन में एक मैडम आए थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट, हिंदी लिटरेचर की। अभी अभी ज्ञान में आए थे, एक 2 मास हुए थे। वहां पर एक जगह सनली रखी थी, हॉस्पिटल का एक कमरा है बाबा का, क्लास चलती थी वहां पर बहुत पहले। तो उनको कहा गया था कि आप सुनाओ सनली पर बैठ के, क्योंकि आप तो हिंदी जानती है, हिंदी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी लिटरेचर। उन्होंने कहा कि मैं हिंदी तो जानती हूं पर वहां बैठने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि वहां बैठने के लिए क्या चाहिए? अनटच्ड प्यूरिटी। कोई भी नहीं बैठ सकता है वहां पर। इसके लिए भगवान ने किसको बिठाया वहां पर? किसको बिठाया? हमारी सभी बहनों को। कौन है सभी? कौन सी देवी है? कौन सी देवी है? ये वही देवियां हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। इसलिए जिन्होंने अपने जीवन को स्वाहा कर दिया इस यज्ञ की वेदिका पर, वो साधारण आत्माएं नहीं है। इसके लिए इस ब्राह्मण जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, यदि किसी निमित्त आत्मा के प्रति विरोध के संकल्प, निंदा के संकल्प, गुटबाजी, करने का इरादा है, संकल्प है, बोल है ग्लानि के, महापातक समझा जाएगा। पातक अर्थात पाप, क्योंकि वहां पर उन्हें किसने रखा है? भगवान ने रखा है। और जिन्होंने अपने जीवन को सर्वस्व समर्पण कर दिया, जिन्होंने अपने जीवन का सारा यौवन यज्ञ के लिए स्वाहा कर दिया, ऐसी समर्पिताएं, ऐसी अर्पिताएं, ऐसी निवेदिताएं साधारण नहीं हो सकती। इसलिए एक बार जोर से सभी विश्व भर की ब्रह्मा कुमारियों के लिए, हमारा मस्तक नमन करें। वो चाहती थी, अगर चाहती तो संसार में बहुत कुछ कर सकती थी, नौकरी कर सकती थी, पैसे कमा सकती थी, कोई उच्च पद पा सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी, पर खुदा के इश्क में जिन्होंने अपनी सारी व्यक्तिगत ख्वाहिशों को कुर्बान कर दिया, ऐसी आत्माएं महान है। तो सार अर्थात सार, मुरली से क्या निकालना है? सार। आज की पूरी मुरली का सार क्या है? मुरली पूरी हुई, सार क्या है? सार वस्तु क्या है? सार तंत्र क्या है? इसेंस क्या है? ऐसी कुछ पॉइंट्स हर दिन मुरली में आने के बाद लिख कर जाना है और सारे दिन भर उसका अभ्यास करना है। दूसरा है रे, रे अर्थात रेखा, रेखा अर्थात लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा अर्थात नियम और मर्यादाएं। तो मुरली से क्या ढूंढना है? मुरली से कौन से स्वर बजाने हैं? मर्यादाएं क्या है आज की मुरली से? कौन सी बात ऐसी बोली जो मर्यादा के लिए है? कल की मुरली में था, तुम्हें इस संसार से नफरत होनी चाहिए, तुम्हें इस संसार का कोई आकर्षण आकर्षित ना करे, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ, बाप आए हैं तुम्हें पावन बनाने, संपूर्ण पवित्रता तुम्हें धारण करनी है, बिना पूछे कुछ ना खाओ, चोरी ना करो, हवच नहीं होनी चाहिए। कितनी मर्यादाओं की बातें आती हैं। भाई भाई की दृष्टि रखो, कभी कभी भाई बहन की दाल भी नहीं गलती। कुछ दिन पहले मुरली में था, कल की मुरली में था, किसी को देखा और लट्टू हो गए नाम रूप में, ऐसी किचड़े की दुनिया, छी छी दुनिया, इससे दिल लगाते हो। हसीन मुसाफिर आया है, मुरली से मर्यादाएं निकालनी है। आज की मुरली में कौन सी मर्यादाएं मेरे लिए है? इस छी छी शरीर को देखो ही नहीं। भगवान उवाच, अव्यक्त वाणी है 1972 कुमारों से मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा, ये शरीर साफ है। केवल मणि को देखो, शरीर को देखोगे तो सांप में इन्वर्टेड कॉमा विष होता है। वो सांप ने अगर काटा तो आईसीयू में बचाया जा सकता है दवाइयां देकर। काम रूपी सांप ने काटा, पांचवी माले से मंजिल से नीचे चकनाचूर। साकार महावाक्य है बाबा के, अगर तुमने काला मुंह किया तो जाओ यहां से, एक साल तक मुंह ना दिखाना। कुमार कुमारिया बाप से पूछते हैं, बाबा हम क्या करें? मां बाप कहते हैं शादी करो। बाप कहते हैं साकार मुरली इन्वर्टेड कॉमा, सिर भी कट जाए। अपवित्र न बनना, मर भी जाओ अपवित्र न बनना। मर्यादा है मुरली से निकालनी, हर चीज के लिए मर्यादा है। अमृत वेले के लिए मर्यादा, मुरली के लिए मर्यादा, भोजन के लिए मर्यादा, ये खाऊं वो खाऊं, मशीन मेड। लिमका कोको कोला सॉफ्ट ड्रिंक कितने कितने लोग पीते हैं, जरा हाथ खड़ा करेंगे? ईमानदारी से, इंद्र सभा है। बाहर की चीजें, एक कुमार आबू आने के लिए निकला, ब्रह्मा कुमार अहमदाबाद तक आया। अहमदाबाद से कुछ लोग उसके बोगी में चढ़े और ट्रेन चालू हुई। वो सब लोगों ने अपना भोजन निकाला और इससे कहा कि तुम भी खा लो। उसने कहा नहीं नहीं हम बाहर का नहीं खाते। उन्होंने कहा बाहर का नहीं, हम घर का ही, हमारी मम्मी ने बनाया है। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भूख नहीं है। तो वो लोगों ने खाना खाया, तीन चार, भोजन पूरा हुआ। फिर उन्होंने बिस्किट का पैकेट खोला, इस ब्रह्मा कुमार को दिया, कम से कम बिस्किट तो खा लो, भोजन तो नहीं खाया, हमारे लिए कम से कम इतना तो मान रखो। उसने सोचा बिस्किट तो ठीक है ना, मशीन मेड, जैसे मशीन अपने आप काम करती है। और उसने बिस्किट खा लिया और जब उठा तो अजमेर आ चुका था और उसका सारा सामान गायब। उस बिस्किट में कुछ मिला दिया था, सो गया, पता ही नहीं चला। सूक्ष्म नियम और मर्यादाएं भगवान दे चुका है। आइसक्रीम मशीन मेड चलता है, लिमका कोको कोला सब चलता है। सुविधाजनक श्रीमत, फिलॉसॉफी ऑफ कन्वीनियंस। श्रीमत को थोड़ा ठीक ठाक करना, यह ठीक नहीं है इसको हटाओ, हाँ अब ठीक है मेरे हिसाब से। बाबा ने कहा है डबल रोटी खा सकते हैं, जो आर्मी में है वो डबल रोटी बाहर की खा सकते हैं। आर्मी से रिटायर हो गए 10 साल हो गए, अभी भी खाना चालू है। वो मजबूरी के लिए कहा था, अपने अर्थों और हिसाब से अर्थ लेना। उस दिन भी कहा था, मुरली में आया था, तुम्हें आम चुरा के नहीं लेना है, पूछ के लेना है। बाबा ने आम के लिए कहा, हमने तो तरबूज लिया। श्रीमद को थोड़ा सा ठीक ठाक करना, हमारे हिसाब से ये ठीक नहीं है, इसको हटाओ, हाँ ये ठीक लग रहा है। श्रीमद के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। मुरली उस आम की तरह है जिसमें ना गुठली है ना छिलका, कुछ भी त्यज नहीं है, ये काम का नहीं है, इसको हटाओ, इसको फेंक दो, ये तो छिलका है, छिलका है ही नहीं, कहां ही गुठली है। उस आम का नाम मुरली है। विदाउट सीड विदाउट स्किन, रे अर्थात रेखा। क्या रेखाएं हैं मुरली में आज की, कौन सी सूक्ष्म मर्यादाओं की चर्चा है। पाप किसे कहा है, पुण्य किसे कहा है, सार किसे कहा है, असार किसे कहा है, ये पढ़ाई है। सा रे फिर है ग, गफलत गलती गड़बड़। मुरली आईना है, इसमें देखना है कौन सी गफलत मैं कर रहा हूं, कौन सी गड़बड़ कौन सी गलतियां मुझसे हो रही है, और सोचना है भगवान ने ये कहा मैं तो ये कर रहा हूं। मन्मत परमत और श्रीमत, इसको जो छांट लेता है वो योगी। गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती। अव्यक्त वाक्य है बाबा के 1972। तीन चीजों को ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म नहीं बना देना है। थ्री पीज, पाप करते रहना, फिर पश्चाताप करते रहना, पार्डन बाप से माफी मांगते रहना, ये तीन पी को ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म नहीं बना देना। हर बार गलती करना, हर बार पाप करना, फिर पश्चाताप करना, फिर बाबा से माफी मांगना, लंबे लंबे खत लिखना बाबा को। खत लिखा, बाबा ये नहीं होना चाहिए था, हो गया, मुझे सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। पाप पश्चाताप पार्डन, पार्डन अर्थात माफी मांगना, ये रीति रस्म नहीं बना दो ब्राह्मण जीवन की। एक मुरली में बाबा ने कहा पश्चाताप करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करो, बार 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 गलतियां कर रहे हैं, और गलतियां बड़ी सूक्ष्म है। किसी मुरली में बाबा ने पाप और पुण्य की परिभाषा दी है, शरीर को देखा अर्थात पाप, आत्मा को देखा अर्थात पुण्य। अब गिनो, पाप ही पाप दिखाई देंगे, बड़ा खतरनाक वाक्य है। इस शरीर को देखते हुए ना देखो, मिट्टी है, किचड़ा है, क्या इससे लगाओ, क्या इसको देखना, क्या इसकी नुमाइश। इस्लाम धर्म में डांसिंग भी अलाउड नहीं है, पब्लिक डांसिंग। वो कहते हैं हम अपनी स्त्रियों को प्रदर्शन के लिए नहीं रख सकते, नॉट अलाउड, हराम है डांस। जहां शरीर के अंग हिलते हैं, क्यों ये नियम बनाए, सोचने की बात है। ग, मेरे से कौन कौन सी गलतियां हुई। मुरली दर्पण है, उस दर्पण में देखो, ये मुझसे गलती हुई। मन भी दर्पण है। एक शिष्य अपने गुरु से कहता है मुझे कुछ शिक्षा दो। गुरु कहता है जाओ बाजू में जो रेस्टोरेंट है, सारा दिन वहां बिताओ। वो कहता है रेस्टोरेंट, वहां पर खराब लोग आते हैं, मदिरा दारू पी जाती है, मैं वहां जाऊं। गुरु कहता है वहीं जाओ। वो वहां जाता है, बैठता है सारे दिन भर, देखते रहता है लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। वहां पर एक वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन के पास एक आईना है, और जो मालिक है वो बीच बीच में जाके उस आईने को क्लीन करता है, साफ करता है। सारे दिन भर ये एक ही एक नई बात उसने देखी वहां पर और वापस आ गया। गुरु पूछता है क्या देखा, उसने कहा कि मैंने एक दृश्य देखा, बाकी तो सब साधारण था, पर यह देखा कि वो मालिक मैनेजर जा जाके आईना पोंछ के आ जाता है बीच बीच में। गुरु कहता है बस यही सीखने था, मन भी एक दर्पण है, विचार धूल है, विचारों की इस धूल को साफ करना है, व्यर्थ विचार, निगेटिव विचार, विकारी विचार, ये जो आ रहे मन को धूमिल कर रहे, कुछ दिखाई नहीं देता, धुंधला हो जाता है सब कुछ, आत्मा निर्णय नहीं ले पाती, जब निगेटिविटी में डूब जाती है सब कुछ निगेटिव दिखाई देता है। तो गलतियों को ढूंढना है, अपनी गलतियों को टटोलना है, देखना है मुझसे कौन सी गलती हो गई, क्या क्यों हुई ये गलती, किस कारण से हुई ये गलती, क्या मैं करूं। गलती से मुक्त होने के लिए सबसे पहले तो गलती हुई है ये पहले एक्सेप्ट करो, हाँ मुझसे ये भूल हुई है, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया है। जो मानता ही नहीं मुझसे कुछ भूल हुई है वो कैसे उससे मुक्त होगा। एक व्यक्ति बीमार है, वो कहता है मुझे बीमारी है ही नहीं, मैं एकदम ठीक हूं, उसके रिपोर्ट्स शुगर 500, बीपी 200 के ऊपर, वो कहता है मैं ठीक हूं, उसे भी पता है मैं बीमार हूं, उसे भी पता है मुझे इलाज लेना चाहिए परंतु नहीं लेता, तो उसे क्या कहेंगे। एक व्यक्ति है बीमार है, एक मास से खांसी चल रही है, उसको लोग कहते हैं अस्पताल चलो डॉक्टर के पास, वो कहते हैं पहले ठीक तो हो जाऊं फिर जाऊंगा डॉक्टर के पास, पहले ठीक तो होने दो, चलने लायक तो हो जाने दो, पहले थोड़ा ठीक हूं स्वस्थ हो जाऊं, थोड़ी शक्ति आ जाए शरीर में तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, चलने की भी शक्ति नहीं है। उसने जो तर्क दिया वो भी अच्छा तर्क है, एक रीति से ठीक ही लगता है, हां कैसे जाएंगे, पहले तो चलने लायक तो बने, परंतु बीमारी इतनी ज्यादा है कि वो उठ नहीं सकेगा, उसे उठाकर लेके जाना पड़ेगा। सारी सृष्टि ही स्ट्रेचर पर है इस समय, लंगड़ाती हुई बैसाखियों के सहारे चल रही है। रोगी है यार आत्मा, देहभान का महारोग, तो गलती क्या हुई, गफलत क्या हुई, कौन सी गड़बड़ चल रही है जीवन में और क्यों चल रही है यह गड़बड़। सा रे ग, उसके बाद म, म अर्थात मुरली का मनन, म अर्थात मुरली का मंथन, मनन करना मुरली का, कैसे करेंगे एकांत में, कैसे करेंगे गहराई में जाकर। मनन से संबंधित चार प्रश्न है जिसकी हम हमेशा चर्चा करते हैं, चिंतन क्यों करना है, चिंतन कब करना है, चिंतन कहाँ करना है और चिंतन के क्या क्या फायदे हैं। पहला प्रश्न क्यों करना है, ढेर सारे उत्तर है, क्योंकि जब तक मुरली का चिंतन नहीं होगा वो मुरली हमारी अपनी नहीं बनेगी, जब तक मुरली का चिंतन नहीं करेंगे दूसरों को समझा नहीं सकेंगे। मुरली में वाक्य आते हैं, माता है बाबा से कहती बाबा हमको मुरली समझ में तो आ गई पर हम समझा नहीं सकते, बाप कहते हैं समझा नहीं सकते अर्थात समझे नहीं है, स्पष्टीकरण होगा चिंतन से, समझा सकेंगे दूसरों को, सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा चिंतन से, और चिंतन से सबसे बड़ा फायदा है व्यर्थ से मुक्ति। सारे दिन भर यदि कोई मुरली चिंतन में लगा हुआ है तो व्यर्थ से अपने आप मुक्त है, परंतु जिसके लिए मुरली केवल क्लास में जाना, मुरली क्लास में बैठना, डायरी खोलना, मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर, डायरी बंद और फिर डोलना और फिर अचानक जागरण, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, एकदम से पता चलना कि मुरली क्लास में है, फिर से डायरी उठाना, धारणा के लिए मुख्य सार, एक दो वरदान, स्लोगन, डायरी बंद, कल मिलेंगे, टाटा। कोई कोई माताएं हमने देखी है सेंटर पर डायरी टेबल के नीचे छोड़कर जाती है, दूसरे दिन ही आएगी, सेंटर पर ही डायरी है। कितनी डायरियां हमने भर दी होगी, मुरलियां लिख लिख कर, लिख लिख कर, लिख लिख कर। क्लास पूरा हुआ, क्लास से बाहर चप्पल पहनते पहनते सार उड़ गया। घर में पहुंचते पहुंचते प्रश्न उत्तर गायब, नाश्ता बनाते बनाते सार वरदान खत्म, नाश्ता करते करते स्लोगन खलास, और शाम होते होते पूरी मुरली गई। और कोई पूछता है मुरली कैसी थी, बहुत अच्छी थी, पर क्या थी वो मत पूछना, बत क्या थी, बोल दिया ना बहुत अच्छी थी, बहन जी ने इतनी अच्छी सुनाई, पहले तो आते नहीं हो क्लास में और फिर पूछते हो मुरली क्या है, पहले तो रेगुलर आते जाओ, जब तक रेगुलर नहीं आओगे तुम्हारी धारणा नहीं होगी। फिर इससे थोड़ा सी खुशी भी होती है, जैसे दूसरों को श्रीमत सिखाई जाती है सीना एकदम से तन जाता है, हमने श्रीमत सिखाई सबको, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। श्रीमत दूसरों को सिखाने का जो रस है बहुत ज्यादा है, चाहे हम में धारणा हो या ना हो। बुद्धू कही के मनन, क्या करना है रोज की मुरली का मनन, कहाँ करना है, बहुत सारे स्थान है, एकांत में कर सकते हो, कभी बाबा के कमरे में कर सकते हो, छत पे कर सकते हो, बगीचे में कर सकते हो, भोजन बनाते बनाते कर सकते हो। चलते चलते कर सकते हैं मुरली के लिए आते आते मनन, ट्रैवल में कर सकते हैं, कहां करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये मत बोल देना सारे दिन भर हम करते हैं। तो अमृत वेले के बाद का समय बहुत अच्छा समय, शाम का योग के बाद का समय या सोने से पहले का समय बहुत अच्छा है, और जिनकी दिनचर्या में दोपहर का समय मिलता है वो भी बहुत अच्छा समय है। और कैसे करना है ये बड़ा प्रश्न है, कैसे का उत्तर बहुत बड़ा है, अलग अलग विधियां खोजनी पड़ेगी, टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे। मधुबन में हमारा जो संगठन है उसमें 108 विधियां निकाली है मुरली चिंतन की, किस तरह चिंतन किया जाए, किस तरह उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, वही 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 रूटीन ना लगे, वही बाप आए हैं तुम्हें ले जाने, ये दुनिया पतित बन गई है, बाप आए हैं पतित से पावन बनाने, तुम्हें दिव्य गुण धारण करने, लक्ष्मी नारायण बनना है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, कांटों का जंगल है, कब्रस्तान बन चुका है, अब तुमको वापस घर चलना है, तुम्हारा तो वो घर तुमको याद आना चाहिए, राजधानी भी याद आनी चाहिए, इधर से सुना और इधर से गया, विनाश सामने खड़ा है, इतनी बार सुना है, इतनी बार सुना है कि उसका असर होना खत्म हो गया है, सुन सुन के बुद्धि सुन हो गई है, सुन सुन के भी और सुना सुना के भी। जैसे तोटा रटन, ये मुरली फटाफट फटाफट सुना दो, काम पूरा हुआ आज का, सुनने वाले फटाफट फटाफट सुन लो, आज का काम पूरा हुआ, डायरी बंद, हमारी मार्क लग गई अटेंडेंस, बस मुरली ये महावाक्य है, मुरली क्लास में जाना, मुरली क्लास में बैठना, मुरली पॉइंट्स लिखना और घर वापस आ जाना, ये है पुरानी चाल। क्या करना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा, मैं पहला खोजा नहीं अगमभव सागर का, मुझसे पहले कितनों ने इसको था, पर मैं उस मोती का आशिक हूं जो मिला नहीं उसे पा लेने की धुन मेरी। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना है, तुम हंसो मगर मेरा विश्वास न हारेगा, कांटे रौंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। तुमको जो करना है करो, परंतु मुझे गहरे जाना होगा। मैं पहला खोजी नहीं अगमभव सागर का, मुझसे पहले कितनों ने इसको था, पर मुझ में उनमें भेद यही, मैं उस गहरे मोती का आशिक हूं जो मिला नहीं उसे पा लेने की धुन मेरी। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, बहुत गहरे जाना है मुझे। रत्नाकर बाप आया है, सागर थालियां ले लेकर आया है। एक एक ज्ञान की पॉइंट्स का चिंतन करो, मनन करो, बाबा के महावाक्य है। गहराई में जाओ, ऊपर हलचल होती है, गहराई में शांत होता है। तो गहराई, मनन मंथन, सा रे ग म प, पढ़ना, पश्चाताप परिवर्तन, पढ़ना है, सुनना पर्याप्त नहीं है। मुरली सुन लिया, हो गया काम पूरा, खुद अध्ययन करना पड़ेगा, खुद पढ़ना होगा। यज्ञ की दिनचर्या बहुत सारी डायरी के पीछे, किसके पास डायरी है जिसमें यज्ञ की दिनचर्या लिखी हुई है? डायरियों में लिखा है ना, उसमें दोपहर में क्या लिखा है, 2 से 4 अमृत वेला, 4 से 4:15 फिर ब्रेक, फिर मुरली, उसमें दोपहर का समय में क्या लिखा हुआ है, किसके पास मुरली है? स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, क्या लिखा है? स्वाध्याय संस्कृत शब्द है। भक्ति मार्ग में पाठ कहते हैं, पाठ अर्थात एक होता है पढ़ना, एक होता है पाठ, पाठ मतलब बार बार पढ़ना। गीता पाठ, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, पाठ अर्थात बार बार, पूरा रमजान रोजा क्या करते हैं, दिन भर कुरान पढ़ते रहते हैं, पाठ। पढ़ना, पढ़ना तो क्या, पाठ करना है उसका, कई बार पढ़ना। एक बार पढ़ने समझ में आती है क्या मुरली? मुरली में 4 बातें हैं, शब्दार्थ, शब्द के अर्थ क्या है, नए नए शब्द आते हैं, भावार्थ, भाव क्या है मुरली उस वाक्य का, क्योंकि वाक्य कुछ और है उसका भाव कुछ और है, वाक्यार्थ, पूरे वाक्य का क्या अर्थ है, और चौथा गुणार्थ, गुण अर्थ क्या है। शब्दार्थ, भावार्थ, वाक्यार्थ, गुणार्थ, मुरली में 4 चीजें हैं। साधारण से शब्द पर इतने गहरे अर्थ है उसमें, एकदम साधारण से शब्द पर शास्त्रों से भी, शास्त्रों में जो क्लिष्ट बातें हैं, साधी साधारण बातें हैं परंतु गहरे अर्थ है उनमें। राजविद्या, राजगुह्यम, पवित्रमिदम उत्तमम, प्रत्यक्षम वगमम धम्य सुसुकम कर्तव्यम। हे अर्जुन, ये राजविद्या है, राजगुह्यम, सबसे गुह्य से गुह्य ज्ञान मैं तुझको सुनाता हूं। पवित्रमिदम उत्तमम, जो पवित्र है उसको पवित्र करने वाला है ये ज्ञान। पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते महसूस करना है कि बहुत गड़बड़ की है जीवन में, अब पश्चाताप भी करना है और क्या करना है, परिवर्तन। जगदीश भाई ने कभी एक क्लास में तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा दी है, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात एक शब्द में परिवर्तन। परिवर्तन नहीं आ रहा है, मुरली पड़े जा रहे हैं, शायद तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। और तीव्र पुरुषार्थ की क्या परिभाषा है? और पहले तो साधारण पुरुषार्थ समझ लेना है। साधारण पुरुषार्थ अर्थात सुबह अमृत वेला उठना, अमृत वेला उठना, फिर थोड़ा चिंतन करना, फिर मुरली क्लास के लिए जाना, फिर भोजन याद में बनाना, याद में खाना, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करना, नुमा शाम का योग करना, रात्रि थोड़ा सी ज्ञान की चर्चा करना, चार्ट लिखना और सो जाना, इसको कहते हैं साधारण पुरुषार्थ। क्या कहते हैं इसको? साधारण पुरुषार्थ। हमारा कौन सा है? साधारण से नीचे वाला, ये साधारण है। इन सभी बातों को डबल कर देना अर्थात तीव्र कर देना। वो जो तीव्रता है अमृत वेले की बहुत ज्यादा हो जाए, वो जो चिंतन है गहरा और तगड़ा चिंतन हो जाए, हल्का फुल्का चिंतन नहीं, परिवर्तन करने वाला चिंतन। प, परिवर्तन। प के बाद ध, ध अर्थात धारणा। सा रे ग म प ध, धारण करना है ज्ञान को, इम्बाइब। अंग्रेजी में शब्द है इम्बाइब, इम्बाइब अर्थात पीना। पीबत राम रस, कबीर ने कहा मैं ये राम रस पी रहा हूं। मुरली पढ़ने की वस्तु नहीं है, पीने की वस्तु है, पीना है इसको, अमृत है ये, जाम है। कब तक पीना है? जब तक नशा ना चढ़ जाए। और जिस व्यक्ति को नशा रहता है वो कैसे चलता है? जिस व्यक्ति को नशा चढ़ जाता है कैसे चलता है? लड़खड़ाता है, पता चल जाता है दूर से ये पिया हुआ है, ऐसा दिखाई दे। नशा कम है इसका मतलब, पूरा होश में चल रहे, नशा कम है, पिया ही कम है, फुल पीना है। रूहानी पियक्कड़ भव, पांच चीजें चाहिए नशा चढ़ने के लिए। सबसे पहला डोज, इतना सा पिया आधा ग्लास चढ़ेगी क्या? फुल पीना पड़ता है, छोटे मोटे एक एक, एक आधे ग्लास से कुछ होगा? कुछ नहीं होता है, डोज ज्यादा चाहिए। एक दूसरा, सुबह एक बार पी लिया बस काम हो गया, ऐसे नहीं, दिन भर पीते रहना पड़ता है, ताकि शाम में एकदम लड़खड़ाते हुए चले व्यक्ति, दूर से पता चले ये पिया हुआ है। बार बार पीना पड़ता है, डोज, फ्रीक्वेंसी। तीसरा नीट सॉल्यूशन, उसमें कुछ पानी भी नहीं डाला तो कहां से नशा चढ़ेगा? एकदम प्योर, बॉटल से निकाला ग्लास में और सीधा, नीट कहते हैं उसको, NEAT, नीट सॉल्यूशन, नीट पीना होता है। चौथा, किसी और के साथ नहीं पीना होता है, यहां दारू भी पी रहे हैं, यहां लिमका की बोतल भी रखी हुई है, तो कहां से चढ़ेगा नशा? और पांचवा, दोस्तों की महफिल चाहिए तब नशा चढ़ता है। कौन से नशा कुमार? कहीं उल्टा सिल्टा मत समझ लेना, किस नशे की बात कर रहे हैं हम? रूहानी नशा। तो रूहानी नशा के लिए मुरली सुबह एक बार सुन ली, सेंटर पर जाके काम पूरा हुआ, कहां से नशा चढ़ेगा? डोज बढ़ाना पड़ेगा, सबसे पहले तो खुद पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कई बार, फ्रीक्वेंसी, बार बार पीना पड़ेगा, बीच बीच में मोबाइल खोलो देखो क्या पॉइंट है, डायरी खोलो देखो वरदान क्या है, स्लोगन क्या है, भूल गया फिर याद करो, भूल गया फिर याद करो, बार 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 याद करो। छोटा बच्चा कैसा पढ़ता है? भूलता है फिर पढ़ता है, भूलता है फिर पढ़ता है। तीसरा, उसके साथ कुछ मिक्स नहीं कर देना, मुरली भी पढ़ रहे हैं और अरे क्रिकेट मैच आज है क्या? अच्छा उधर ये हो रहा है, हम भारतीय हैं या विश्व विश्व कल्याणी है या भारत कल्याणी है, तो किसकी खुशी से हमको खुशी होनी चाहिए, जीतने से? प्रश्न चिन्ह, हम जीत जाए दूसरे हार जाए, या हम हारे क्यों? वसुधैव कुटुंबकम्। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। और क्रिकेट मैच देखते देखते शरीर छोड़ दिया तो अंतमति सो गति, किसकी याद में गए? किसकी याद में गए? एक्साइटमेंट कितना है, उसी एक्साइटमेंट में शरीर छोड़ दिया तो जीवन भर का पुरुषार्थ धरा के धरा रह जाएगा। अंतमति सो गति, मिक्स नहीं कर देना है कुछ। अगला, उसके साथ साथ दूसरा और कोई ड्रिंक नहीं होना चाहिए। मुरली भी पढ़ रहे हैं, नॉवेल भी पढ़ रहे हैं, संसार की मैगजीन भी पढ़ रहे हैं, और लास्ट रूहानी महफिल, दोस्त संगी साथी ऐसे मिल जाए कि पीने की इच्छा नहीं तो भी उनको देखकर पीने की इच्छा हो, ऐसे साथी चाहिए पावरफुल, ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों का संगठन, ऐसी वैराग्य से युक्त आत्माएं, ऐसी धधकती हुई वैराग की ज्वाला जो हृदय में लिए हुए तपस्वी आत्माएं, ऐसी आत्माओं का संग जो हृदय में वैराग उत्पन्न करे। धारण, पी लेना उसको, सकिट चूस लेना उसको, उसमें रंग जाना, इतना उसमें डूब जाना। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे हरि घूम रहा है, पहले हम उसके पीछे घूमते थे, अब मैं ऐसा पवित्र हो गया हूं, मन इतना निर्मल हो गया है कि हरि पीछे से घूम रहा है और पुकार रहा है कबीर कबीर कबीर, वो पीछे पड़ा हुआ है, पहले हम उसके पीछे पड़े थे, अब वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। लास्ट नी, निधि ध्यासन, निधि ध्यासन शास्त्रों में शब्द आता है, तीन बातें लगभग सभी उपनिषदों में आते हैं, श्रवण मनन निधि ध्यासन। निधि ध्यासन अर्थात कार्य में लगाना, जो ज्ञान सुना, श्रवण किया, मनन किया, अब उसको पुट इनटू एक्शन, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कन्वर्ट करना। जो ज्ञान दिन भर मुरली में सुनते हैं सुबह, उसको सारे दिन भर अप्लाई करना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज नोन एज निधि ध्यासन। ज्ञान को यूज करना सारे दिन भर, मुरली में सुबह बहुत सुन लिया, तुम्हें सहन करना है, सहन करना है, सहन करना है, और दिनचर्या में जरा सी बात नहीं सहन करते किसी की, झगड़े। सुबह 2 बजे उठे हो, योग करो, मुरली सुनो, और सारे दिन भर लड़ाई। क्या कहेंगे? ज्ञान अपनी जगह रहा है, जीवन अपनी जगह रहा है, परिवर्तन कुछ भी नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट ऑपरेट कर रहे हैं, मुरली क्लास, अमृत वेला और ये दिनचर्या, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। दिन में वही कर रहे हैं जो पहले भी करते थे, इस ज्ञान का इधर कुछ भी प्रभाव ना हुआ। तो निधि ध्यासन, नी धी ध्यासन अर्थात प्रैक्टिकल अप्लाई करना। तो मुरली की जब धुन बजेगी ऐसे स्वरालाप होंगे, ऐसी मधुरिमा मधुर संगीत जब गूंजेगा तब सारे अवगुण दूर हो जाएंगे। तो मुरली की ये 7 बातें थी, फिर से रिवाइज करेंगे। सा सार निकाल लेना मुरली का, रे रेखाएं क्या क्या मर्यादाएं थी जिसकी अभी अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। तीसरा ग गफलत क्या हो रही है, गलतियां मैं कौन सी कर रहा हूं, और गड़बड़ सा रे ग म क्या करना है मुरली का, मनन चिंतन मंथन। उसके बाद प क्या करना है, पढ़ना, रोज पढ़ने की आदत डालनी है। इसमें और एक चीज ऐड करनी है, ज्ञानामृत हर मास के 10 तारीख से पहले ज्ञानामृत पूरा पढ़ के हो जाना चाहिए। अभी प्रतिज्ञा करनी है सबको, ठीक है? कौन कौन पढ़ेगा हाथ खड़ा करो। हर मास के 10 तारीख से पहले, टाइम लिमिट दे रहे हैं, टारगेट 10 तारीख से पहले जो भी ज्ञानामृत है एक एक शब्द पढ़ के हो जाना चाहिए। इसको नियम बना देना है, 10 तारीख कैलेंडर में मार्क करके रखो, इस 10 के पहले मुझे ये पूरा ज्ञानामृत पूरा करना है। कब पूरा करेंगे? समय को चुराना पड़ेगा, चुराना समय को। वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, खोलो और पढ़ो। कुछ और कर रहे हैं, टाइम को स्टील चुराना है, इधर उधर से टुकड़ा टुकड़ा टाइम, सेकेंड सेकेंड टाइम को चुराना है। कोई एक पूरा दिन नहीं मिल जाएगा, हाँ तुम अभी आज पढ़ लो, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद द धारणा, उसके बाद नी निधि ध्यासन। तो सारे ग म प ध नी सा, ऐसी सरगम ऐसी मुरली की धुन हमारे अंदर बजे। सभी योग युक्त होके बैठेंगे, अभी 2-3 मिनट योग का एक प्रयोग करेंगे और उसके बाद में एक 10 मिनट का ब्रेक होगा। ओम शांति। संपूर्ण शरीर शिथिल, मन संपूर्ण शांत, भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। शक्ति की तरंग हूं, निर्विकार हूं, संपूर्ण वायुमंडल अव्यक्त, यहां से उड़कर पहुंच गई मधुवन तीर्थ धाम। मधुवन में मुरली बाजे, बाबा की कुटिया, मुरली की धुन, बाबा का कमरा, उसकी यादों में आत्मा डूब गई। हिस्ट्री हॉल सारा व्यर्थ समाप्त। शांति स्तंभ शक्ति आत्मा में भर रही। मैं फरिश्ता, भरपूर हो रहा हूं। मधुबन की हर गली में, हर गलियारे में परमात्मा प्रेम का संगीत सुनाई दे रहा है। प्रभु प्रेम का स्पंदन मुरली की अलौकिक गूंज ये किसने कदम रखे हैं इस धरा पर, ये कौन आया है, ये किसका गीत है, किसका संगीत, किसकी वाणी। ये सुरसंग सरगम किसका है, मैं आत्मा भरपूर हो रही। परमात्मा संगीत हृदय में गूंज रहा है। इसी रूहानी संगीत को लेकर अब मैं आत्मा वापस फरिश्ता स्वरूप आकाश मार्ग धीरे धीरे पार्थिव शरीर में प्रवेशता। मैं अलौकिक फरिश्ता हूं, गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हूं। भगवान के महावाक्य और उसकी मुरली जीवन का आधार है, परिवर्तन का साधन है, सीढ़ी है, दर्पण है। इसी मुरली को नस नस में बसा देना, हर दिन इस मुरली को पी जाना, रूहानी नशा, रूहानी खुमारी, इलाही मस्ती, नारायणी नशा। अब यही जीवन का लक्ष्य है। ओम शांति।